नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। घरेलू एलपीजी उत्पादन स्थिर है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में उपभोक्ताओं को 11,300 टन व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है और खुदरा दुकानों पर एलपीजी की कोई कमी नहीं है।
एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। पैनिक बुकिंग में काफी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है।
सुश्री शर्मा ने बताया कि प्रीमियम पेट्रोल की दरों में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि सामान्य पेट्रोल की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री दुर्घटना नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान, मलेशिया, फ्रांस, जॉर्डन और कतर के नेताओं से बातचीत की और पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए संवाद, तनाव कम करने और शांति पर जोर दिया।
ईरान के रास्ते बहुत सारे भारतीय नागरिक जो ईरान में हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते देश लौट रहे हैं, उसमें वृद्धि हुई है। अब 913 भारतीय नागरिक ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान में एम्बेसी की मदद से उस सीमा पार कर चुके हैं और कई लोग इसमें से वापस आ भी चुके हैं। 284 तीर्थयात्री वहां पर फंसे हुए थे, वो सभी 284 तीर्थयात्री अब भारत वापस आ गए हैं।
इसराइल ने ईरान में नूर के आसपास के क्षेत्रों सहित कई ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। इसराइल की सेना ने कहा कि ईरान और हिजबुल्ला के खिलाफ सभी लक्ष्य हासिल होने तक सैन्य अभियान जारी रहेगा। उधर ईरान ने पूरे क्षेत्र में इसराइल के ठिकानों और अमरीका के हवाई अड्डों पर नए हमलों की शुरूआत कर दी है। खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा केंद्रों पर दागे गए ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद खाड़ी सहयोग परिषद के कई देश हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहरीन के शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बातचीत की और ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की तथा ऊर्जा और रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों की निंदा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, दक्षिण कोरिया की उप विदेश मंत्री पार्क यून जू, भारत में कजाकिस्तान के राजदूत अजमत इस्कारेव और बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर विचार साझा किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम हो गई है। नई दिल्ली में आज आयकर अधिनियम 2025 पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 में उन्होंने कहा कि नया अधिनियम कम पेचीदा है और लोगों को सरल ढांचा प्रदान करता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि छोटे व्यवसायी और पेशेवर अर्थव्यवस्था के इंजन हैं और नए अधिनियम के तहत अनुमानित कराधान योजना को मजबूत किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज निवेश परियोजनाओं में तेजी लाने की घोषणा की और निवेशकों को निर्बाध सहायता सुनिश्चित करने के लिए 108 उद्यमी मित्रों का कार्यकाल इस वर्ष मई तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। समिति ने 24 नए उद्यमी मित्रों के चयन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को भी मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार आत्मसंयम, दान और जरूरतमंदों के प्रति करुणा का संदेश देता है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।